नारायण 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 राम 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 राम। कब बोलो, हम बात करें उस पर आप विशेष ध्यान दें। अब उसको जो हृदय से पकड़ रहे हैं बहुत लाभ की बात है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, इसमें निरंतर क्रिया होती है और जो तत्व है स्वरूप परमात्मा का और स्वर्ग जीव का जो तत्व है वस्तु में, उसमें क्रिया होती ही नहीं। ये दोनों का अलग अलग स्वभाव है। प्रकृति पुरुषम से विद्धि नादि उभाव की, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो ये अनादि है तो प्रकृति में क्रिया हासिल रहती है और पुरुष में क्रिया होती ही नहीं, और इसमें क्रिया मिटती ही नहीं। इतना फर्क है दोनों, हर दिन क्रिया होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है उसमें प्रकृति की एक अक्रिय अवस्था और एक सक्रिय अवस्था दो का। अक्रिय अवस्था सक्रिय अवस्था की अपेक्षा है, परंतु सूक्ष्म क्रिया कभी बंद नहीं होती। जैसे जागते हुए हम काम करते हैं और नींद लेते हैं तो काम नहीं करते, चुप रह जाते हैं। तो जागते हुए हम काम करते हैं तो उसमें भी शरीर के नाश की एक क्रिया नहीं हो रही है। एक तो काम करते हैं वो धंधा होता है, वो क्रिया होती है, और एक इसके नाश की क्रिया स्वतः उम्र खत्म हो रही है, स्वतः स्वाभाविक वो क्रिया है। तो काम करते हैं नहीं करते हैं ये तो अवस्था दो है, परंतु उम्र नष्ट होती है, समय जा रहा है, मौत आ रही है, ये क्रिया कभी बंद नहीं होती। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक ध्यान में आया ना? तो ये क्रिया कभी नष्ट नहीं होती, वो मृत्यु क्रिया नहीं हो रही। काम करो तो ही वह क्रिया है, काम नहीं करो तो भी, नींद लो तो भी, चुप रहो तो भी, वह क्रिया तो चल रही है। ठीक है ना ये बात? ठीक समझ में आती। इसी तरह से प्रकृति की क्रिया संसार के समय में सर्जन होता है, सृष्टि पैदा होती है, तब वो क्रिया होती है, और जब सृष्टि लय हो जाती है तो प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय हो जाती है किस विषय में? कि जो संसार की रचना इस विषय में, परंतु प्रकृति की स्वतः क्रिया उसमें नष्ट नहीं होती। जैसे हमारी नींद में जागृत में दोनों में क्रिया होती है, ऐसे प्रकृति की क्रिया होती रहती है। नींद में क्रिया हमारी होती है तो वो तो क्रिया होती है, उसके सिवाय नींद में एक क्रिया होती है। एक तो बाहर के क्रिया करते हैं, एक नाश की तरफ क्रिया होती है, और तीसरी एक क्रिया नींद में होती है। नींद कच्ची नींद में जगा रही है, अब तो पक्की नींद, अब तो कच्ची नींद है, तो कच्ची से पकेगी तो क्रिया होगी कि नहीं? उसमें कुछ भी परिवर्तन होता क्रिया होती है तो पकती है। तो वो क्रिया एक हुई पकने की क्रिया, तो वो कच्ची पकी क्रिया शरीर में चलती ही रहती है, और नाश की क्रिया भी नहीं सुखर स्वाभाविक हो रही है। तो ये जो नाश की धर्म क्रिया है स्वतः हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, वो जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में स्वर्ग में प्रलय में महाप्रलय में महाप्रलय में हर समय हो रही है क्रिया। अब ख्याल आ जाए ना, क्रिया के तीन भेद कर दीजिए, परंतु वो नाश की क्रिया वो एक ही क्रिया निरंतर रहती है। और परमात्मा तत्व स्वरूप जो है जीवात्मा का खुद का स्वरूप, इसमें क्रिया नहीं होती, क्योंकि यही रहता है। अगर इसमें क्रिया हो तो 84 लाख भुगते कौन, खत्म हो जाएगा। ये है जो का तू रहता है। ईश्वर जीव अविनाशी है ना, ये अविनाशी है, इसमें क्या सही होता, और ये प्रकृति क्रिया नष्ट होती। तो अविनाशी है वो इनसे अलादा है, जिस जीवता है जितना मन बुद्धि इंद्रियाला शरीर संसार धन संपत्ति वैभव ये सब में क्रिया हो रही है, ये नाश की तरफ जाता सब कुछ हो गया है। और जो स्वयं अपना स्वरूप है वो अविनाशी है, जो कहते हो अनुभव है इसका, आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको अनुभव है। बालकपन में मैं ऐसा करता था, वहां पढ़ता था, आज ऐसा करता हूं, तो बालकपन में और अभी मैं आप में मैं वही हूं, ये निरंतर आपका रहना है। और बालकपना और अभी है, ये है क्रिया का रूप, ये प्रकृति का रूप है, एकदम जा रही है। और मैं वही हूं जो बालकपन में था, तो वही हूं, ये तो है नित्य रहने वाले स्वरूप की तरफ। और बालकपना और जवानी वृद्धावस्था है, ये स्थूल क्रिया की तरफ। तो वही हूं उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया हो तो नष्ट हो जाए, उसमें क्रिया नहीं है। और इसमें क्रिया जो नष्ट होती है कभी कभी एक रहती नहीं। अब इसकी नित्य क्रिया है निरंतर, ये स्वाभाविक है, ये करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक है। जैसे बालक से जवान होने के लिए उसको को करना ही पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, ऐसे जवान को बूढ़ा होने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, आप साफ होती है। ऐसे जन्म मृत्यु स्वतः स्वाभाविक से ही हो रही है, जितनी क्रिया है स्वाभाविक से ही हो रही है। और भीतर जो स्वयं है वो अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है। अब स्वयं ने इनके साथ अपना संबंध मान लिया, इस वास्ते बालकों से मैं बालक हूँ, फिर मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं देव हूँ, जो कहता है स्वयं तो ये है जो कहता है। और ये प्रकृति की क्रिया से इस भेद को अगर आप ठीक समझ ले आप, तो इस भेद को समझ करके अक्रिय अवस्था में आप स्थित रहे और क्रिया की शरीर की होती है, इसमें स्थित रहना यही ज्ञान है, ये जीवन मुक्ति है। इन क्रिया से रहित अपना जो अनुभव है ये है मुक्ति, क्रिया के सहित रहना है ये है बंधन। खास मार्ग की बात बताई अब वो आप ख्याल करो कि समझा ठीक है, ऐसा अनुभव करो कि क्रिया जितनी होती है शरीर में होती है, उम्र भी शरीर की आती है, स्वयं की उम्र नहीं आती है, स्वयं नष्ट नहीं होता है, वो काल खाता नहीं उसको, और सही आगे इनको सूक्ष्म स्थूल कारण सबको काल खा रहा है। अब इसकी स्थूल क्रिया हो, शायद चिंतन क्रिया हो, मनन क्रिया हो, और चाहे आपका ध्यान भी क्रिया हो, और चाहे ध्यान से अगर समाधि भी लग जाए तो समाधि में भी क्रिया है, इससे उत्थान होगा। तो स्थूल क्रिया जैसे ही स्थूल शरीर प्रधान है, चिंतन चिंतन मनन में सूक्ष्म शब्द से ही प्रधान है, और समाधि है वो कान से ही प्रधान है, कान से ही है, इससे अतीत है समाधि आदि से ही वो है स्वरूप। बस अतीत स्वरूप को जो ठीक अनुभव कर लेना है ये वास्तविक स्वरूप है। बात विचार से तो समझ आ गई ना, ठीक ऐसी बात है, अब इसका अनुभव करना है। आप मान के चलिए बात यह है, इस पर जितना का आपका दृढ़ विचार हो कि सच्ची बात यही है, ऐसा आप दृढ़ विचार कर लोगे फिर अनुभव हो जाएगा।
बिल्कुल सही है,
हाँ बात। फिर मान्यता नहीं रहेगी। अभी तो मान्यता है, फिर मान्यता नहीं रहेगी, फिर तो क्यों नहीं जाएगा, है ही। ये वास्तविक बात है, प्रकृति की क्रिया हो रही है, संसार मात्र की क्रिया अभाव में जा रही है। ये शरीर है, वृक्ष आदि है, इसमें जो है बड़े बड़े जो पेड़ है, तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और समुद्र है, सब की क्रिया नाशित हो जा रही है। जैसे जागृत में अपने जितने थे हैं सब सोने की तरफ जा रहे हैं, और सोना है जागरण की तरफ जा रहा है, और जागरण सोना ज्यादा सोना हो रहा है, ऐसे रात और दिन ये क्रिया है, रात दिन बदलते ये क्रिया है, पर इनको सब कुछ जानने वाला है उसमें क्रिया नहीं है। ये पहले ही मैंने बताया, जैसे आदमी 10 आदमी गए तो ये कहता 10 गए उसको जानने वाला अलग है 10 और, ऐसे क्रिया वीर सी है, इन क्रियाओं को जानने वाला है वो क्रियाओं से रहता है, सब क्रिया उसके सामने दिखती सही। संपूर्ण क्रियाओं का साधन है ज्यों का त्यों रहता है, वास्तव में है दृष्टि है नहीं आपके पास चार नारी
बिल्कुल
आपको समझ में आएगी, पूछता हूँ नहीं तो इसमें आप संदेह उत्पन्न होता हो तो बोलो। हाँ तो समाधि में जो अवस्था होती है ना, एक समाधि एक गुत्था काली शरीर से बिथान होता, कारण शरीर से अतीत होने पर बिथान नहीं होता,
प्रारब्ध कर्मों का जो संग्रह है वो कारण शरीर में रहता,
कारण शरीर मूल कारण शरीर में, उस वास्तव का कारण वैसे ही कारण ना है उसका, संपूर्ण स्थिति जो बल भोग आदि होता है सबका कारण शरीर वो इसका कारण है, वो ये कार्य है सब,
जन्मांतरों के जो कर्म है
वो उसी है, उसी में है, उसी में।
और जीव जब भी शरीर
छोड़ के
अन्य शरीर में ग्रहण करेगा तो कारण शरीर उसके साथ में
ही रहता है, कारण शरीर साथ में सूक्ष्म शरीर साथ में स्थूल से ही छूटता। महाप्रलय में सूक्ष्म से भी छूट जाता है, कारण शरीर में सब रहता है, कारण शरीर में स्थूल के सूक्ष्म के सबके संस्कार रहते हैं, बीज है वो, जैसे बीज में वृक्ष रहता है ना त्याग देता है, दूसरे अलग अलग फूल है, फल अलग अलग है, रस अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है, वो अलग अलग अपना बीज में है, वो चीज दिखता नहीं अभी वो गलता नहीं करेगा बीज रहता, इसी कारण से ये सब संस्कार रहते हैं। आज शरीर प्राप्त होता है तो उस प्रतीत होता है मान हो जाता है।
अब इसका अनुभव करना क्या है?
अनुभव करना है ना, अनुभव मानो जस्ती है, जोर जो दीखने लग जाए, ये हटे नहीं करे। जैसे आप अपने को मानते हैं कि हम अभी यहाँ जोड़े पर बैठे हैं, तो इसमें मानना नहीं पड़ता, सतत स्वाभाविक है, क्यों स्वाभाविक है, निरंतर खाओ पियो बैठो उठो बातचीत करो, वह है ही है वो अनुभव। वो अनुभव है, आपको करना है दो बात, एक तो क्रिया में और एक पदार्थों में जो खिंचाव है इसको मिटाना है। पदार्थ प्रिय लगते हैं, लगती है वस्तु आदि प्यारी लगती है, और क्रिया करने में रुचि होती है, करना अच्छा लगता है, ये जो अच्छा लगना पड़ना ये बाधा है खास, अब इसको हटाना है, ये करना है सब, फिर यही समझ जाएगा। अनुभव है। अगर क्रिया और पदार्थों में आकर्षण नहीं रहेगा तो वो स्वतः तत्व प्राप्त हो जाएगा। इसमें आकर्षण रहने से क्रिया में आसक्ति रहती है, अक्रिय में स्थिति होती नहीं, स्थिति रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। क्रिया में आसक्ति नहीं, इनमें सब में क्रिया है तो करने में काम है, ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करने में राग है, वो वस्तु मिल जाएगी, वो व्यक्ति मिल जाएगी, वो पदार्थ मिल जाएगा, वो पद मिल जाएगा, वो हमारा अंक मिल जाएगा, ये वस्तुओं की, तो वस्तुओं की क्रियाओं की जो आसक्ति है ये सब बाधा है। क्यों मिटा सको, क्यों मिटा लो, किस वजह जो मिटा आपने जो मिटा लो तो ठीक हो जाएगा। गीता ने योग की परिभाषा दो जगह की है, एक दुख संयोग वियोगम योग संयुतम और एक का है समत्वम योग उचित है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुतम, योग इसका नाम है, और एक समत्वम योग उचित है। और योगा कर्म सुकौशलम, ये योग की महिमा है। इसका नाम योग है संसार का, संसार के संयोग का वियोग, इसका नाम योग है। तो संसार के वियोग का योग कर दो चाहे समता कर दो, मतलब संसार के संयोग का वियोग होने पर समता हो जाएगी और समता होने पर संसार के वियोग संयोग का वियोग हो जाएगा। योग की महिमा है। इसमें सुगम कर्म योग है, दूसरों को सुख कैसे हो, अभाविक है, आरक्षित है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इनको सबको आराम कर दिया, सबको सुख करना, तो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए, फिर ये सुख जाएगी, अपने सुख पाने के लिए भोग भी आसक्त हो जाए, ये सूर्य योग प्राप्त हो जाए। स्वतः तो प्राप्त है ही, स्वतः स्वाभाविक परमात्मा तो है, योगा तो है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण शरीरों में है, शरीर की जागृत अवस्था सुषुप्ति प्रलय आदि में भी है, सज में भी है, प्रलय में भी है, महासर्ग में भी है, महाप्रलय में भी है, हर्षम स्वर्गे बनोपजायन थे, प्रलय ने महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते, महाप्रलय में जहां नहीं होती, वो है जो रहता, उसको माध्यम प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त है वो, अब ये आकर्षण है पदार्थों में क्रियाओं में, इस वजह से उसका अनुभव नहीं होता, लग गया। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम सुखी स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा पाठ्य शुक्ल दिया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे मध्य तिथि के बाद नेशनल जोड़ा पर हुआ।